आज का विषय है सच्चा ब्राह्मण सुफरिश्ता। हम अपने आप को चेक करें, जैसे आज की मुरली भी थी ना कि बाबा ने कहा कि अपना सच्चा सच्चा समाचार हमें बाबा को रोज देना है ना, तो आज हम अपने आप को इसमें बहुत गहराई से हम समझेंगे कि ब्राह्मण क्या है, फरिश्ता क्या है और कैसे क्या हम सचमुच में सच्चे ब्राह्मण बन गए हैं। जैसे बाबा ने कल मुरली में कहा था कि हम निश्चय बुद्धि कितने परसेंट हैं, 100% निश्चय बुद्धि है, पूरा निश्चय बुद्धि है। बाबा ने कहा कोई 50% निश्चय बुद्धि है, कोई 25%, कोई 10% है। तो आज हम इसी बात को गहराई समझेंगे कि कैसे हम ब्राह्मण सुफरिश्ता बनते हैं। हम चलनी पे चलते हैं, सबसे पहले तो मैं मनुष्य शब्द की आपको परिभाषा बता दूं और ब्राह्मण शब्द की परिभाषा बताऊं, फिर हम चलेंगे कैसे हम देवता थे, देवता से कैसे मनुष्य बने, मनुष्य से कैसे फिर हम शूद्र बने और कैसे फिर बाबा का आयत ब्राह्मण बने और फिर कैसे हम फरिश्ता बनेंगे। इसी बात को बहुत गहराई से हम समझेंगे क्या नियम और क्या धारणाएं हमारे जीवन में हो तो हम सच्चे ब्राह्मण कहलाएं। और फिर ब्राह्मण बनने के बाद 63 जन्मों के पाप कर्म विनाश करने हैं, वो पूरा करने के बाद हम फरिश्ता बनेंगे। इसी बात को हम बहुत गहराई समझते हैं। पहली जो बात है, हम मनुष्य शब्द का मतलब समझें। देवता, हम सत्युग में देवता थे, त्रेता में क्या बने, क्षत्रिय बने, और जब द्वापर युग शुरू हुआ तो हम मनुष्य कहलाए। हम देवी देवता की नहीं कहला सकते थे, क्षत्रिय भी नहीं कहला सकते थे, किंतु मनुष्य कहलाए। मनुष्य शब्द दो शब्दों से बना है, मन प्लस पुष्य, इसका अर्थ है मन के वश में। मनुष्य माना जो मन के वश में है, अर्थात आत्मा का राज्य नहीं है, सत्युग में आत्मा का राज्य है। स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा, राज्य सब आत्मा का राज्य किस पर है, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार, 5 कर्मेंद्रियां आंख नाक कान मुख और भारी त्वचा और अंदरूनी त्वचा, जहां जहां हमें सेंसेशन जहां फील करते हैं, जहां सेंस फील करते हैं, और शरीर के 8 अंग भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं सत्युग में। सत्युग में आत्मा के पास इतनी शक्ति है, 7 एनर्जी, आत्मा कैसे चलाती शरीर को, आत्मा के 7 एनर्जी है, ऊर्जा है, चैतन्य ऊर्जाएं हैं, आत्मिक ऊर्जाएं हैं, ज्ञान, पहला है ज्ञान, ज्ञान माने सत्य की समझ, ट्रुथ क्या है, सत्य की समझ, इस सत्य को रियलाइज करते रहे, सत्य को रियलाइज करने की शक्ति, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है और सृष्टि रूपी ड्रामा क्या है, इस सार रूप में इसको हम ABCD कहते हैं, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। ये सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग इज द ट्रूथ, और इसके आधार पे जितना हम इसको गहराई से हम मनन चिंतन करते हैं, इस मुरली को, मुरली क्या है बेसिकली, बाबा की मुरली क्या है, बाबा की मुरली में भी 4 ही बातें होती हैं मुख्य, आत्मा का परिचय गहराई से, परमात्मा का परिचय और आत्मा परमात्मा के संबंधों की बात, बाप टीचर सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन बच्चा और भी जो पॉसिबल संबंध है, सारे संबंध हम बाप से करते हैं, और फिर इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्यन का नॉलेज, कर्मा फिलोसॉफी का नॉलेज, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार इस सृष्टि रूपी ड्रामा में 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करती है, कर रही है। और परमात्मा जो शिव बाबा है वो इसका क्रिएटर भी है ड्रामा का, डायरेक्टर भी है और सुप्रीम जस्टिस भी है, और वह हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन देते हैं, देते रहते हैं। इसलिए ये जो ज्ञान है ABCD का या ये बाबा की मुरली है, इसका जितना गहराई से मनन चिंतन मंथन स्मरण करते हैं उतना गहराई से हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। पवित्रता का अर्थ क्या है, अपने सत्य स्वरूप में टिककर स्थित होकर दूसरे के सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। जितना अधिक हम इस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते जाते हमारे अंदर पवित्रता आती जाती। तीसरी शक्ति है, तीसरी जो एनर्जी है वो है शांति। शांति माना ना पास्ट का चिंता ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में सिर्फ वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड होके इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते रहना, उसे फंसना नहीं। फिर है प्यार, प्रेम, रूहानी प्रेम। रूहानी प्रेम क्या है? बिना शर्त के, बिना शर्त के अनकंडीशनल सब आत्माओं को, सब मनुष्यों को आदर के साथ उनको स्वीकार करना और उनकी पालना करना। किसी ने मेरे साथ धोखा किया, दुख दिया, परेशान किया, ये नहीं कि उसके प्रति मैं केयर ना करूं, उसकी पालना ना करूं, उसको स्वीकार ना करूं। उस आत्मा को उसके पार्ट के साथ स्वीकार करना, जो भी पार्ट प्ले कर रहा है, कोई मेरा दुश्मन का भी पार्ट प्ले करे, मुझे गाली भी दे, दुख भी दे, तो भी जैसे भगवान क्या करता है, शिव बाबा क्या करते हैं, हर आत्मा को, चाहे आतंकवादी क्यों ना हो, चोर क्यों ना हो, डाकू क्यों ना हो, बाबा उसको भी पालना देते हैं। देते कि नहीं देते? केयर करते नहीं करते उनकी? वो भी उससे कुछ काम करना हो तो भी भगवान के पास जाता है पहले, उसको प्रे, उसके उसको प्रार्थना करते हैं जाके, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनको भी सब कुछ देता है। तो ऐसा प्यार भगवान का है, तो ऐसा इसे कहते हैं रूहानी प्यार। इंग्लिश में कहें तो शब्द अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी वन इन द यूनिवर्स। पूरे विश्व में हर आत्मा को बिना शर्त के आदर के साथ स्वीकार करो और पालना दो। किसी धरती पर किसी एक भी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में दूसरी भावना ना हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी खराब हो, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है। उसने मुझे दुख क्यों दिया? क्योंकि मैंने इसको दुख दिया था। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया हुआ पिछले जन्म में। कोई मुझे तंग क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने तंग किया था। तो इस जन्म में जब बाबा मुझे मिला है तो तब मैं उसको स्वीकार करूं। ये है रूहानी प्यार। जब ऐसा प्यार सारे विश्व में हम सबको केयर करते हैं, सबकी सबको हम पालना देते हैं, तो हम परमात्मा का प्यार महसूस कर सकते हैं। जब तक मेरा ख्याल इसमें या इसमें अटका हुआ है, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसको मैं देख नहीं सकता या इसको मैं देख नहीं सकती, तब तक मैं परमात्मा के प्यार को महसूस नहीं कर सकता। और जब हम ऐसा रूहानी प्यार पैदा करते हैं तो परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं, अपने ऊपर परमात्मा की छत्र छाया महसूस करते हैं, परमात्मा के समीप महसूस करते हैं। उस समय ऐसे लगता है कि हर समय बाबा मेरे साथ है, बाबा छत्र छाया के रूप में मेरे साथ है। मैं अविनाशी आत्मा हूं, अविनाशी परमात्मा की स्थिति, पिता के संतान। तो ये जो फीलिंग है, हर समय बाप मेरे साथ है, ये हमें अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग कराता है, देहभान से ऊपर ले जाता है, ये दुनिया से ऊपर ले जाता है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियंस, हमारी अंतरात्मा, हम इस दुनिया से ऊपर उठ जाती है और हम परमात्मा के नजदीक में। अदरवाइज क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है, किसी ना किसी में फंसी रहती है, या तो किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में, तो हम परमात्मा के नजदीक नहीं जा सकते। जब इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठते हैं सबको स्वीकार करके, तो ही हम परमात्मा के प्यार को महसूस कर सकते हैं। कोई ब्राह्मण कहे कि मुझे वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको मैं देखना नहीं चाहता, और वो कहे मुझे अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, तो गलत है, झूठ है वो, राइट? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सारे विश्व में सबको स्वीकार करने के बाद, आदर देने के बाद ही हम परमात्मा के प्यार को महसूस कर सकते हैं। और ये जो फीलिंग है, इसी को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, सुपर सेंसुअस जॉय कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आनंद। आनंद माना आत्मा देह और देह के दुनिया के पार बाप की गोद में लवलीन हो जाए, बाप की याद में खो जाए। और जो फीलिंग है थोड़ी देर की, आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई, आनंद, आन माना बंधन, देह और देह की दुनिया के बंधन से परे चले जाना, बाप के प्यार में खो जाना। उस फीलिंग जो फीलिंग है आनंद की फीलिंग जो आती है एक्सटेसी, थोड़े मिनट की भी 30 सेकंड की भी फीलिंग, वो इतनी मधुर होती है, इतनी प्यारी होती है, उससे मुझे समझ में आता है परखने की शक्ति पैदा हो जाती है। ये अनुभव, बाप के साथ का अनुभव, बाप की प्यार में खो जाने का अनुभव, लवलीन होने का अनुभव, अतिंद्रिय सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, इससे मुझे परखने की शक्ति आती है कि राइट क्या, रॉन्ग क्या। इससे मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति आती है, मैं मुझे यही करना है, मुझे 4 बजे उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए धरती पर मुझे क्लास में जाना ही जाना है, ऐसा दृढ़ता अंदर से निर्णय कर लेते हैं। फिर ऐसी बात के लिए हम बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं, विस्तार को सार में ले आते हैं, कितनी भी बड़ी बात हो, पहाड़ जैसी समस्या, उसको भी राई बना लेते हैं। और समेटने की शक्ति आगे समेट के हम बाबा में लगा देते हैं। जब बाबा से हम ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, जो सब कुछ ऐसा हम बाबा से कंबाइन होकर सहन भी कर सकते हैं और सहन करके समा भी सकते हैं। जो सही परखता नहीं है, जो निर्णय टाइम पर नहीं लेता है, वो छोटी बात को बड़ा कर लेता है, राई का पहाड़ बना लेता है, ये बना लेती है। और ऐसा व्यक्ति समेट नहीं सकता अपने मन बुद्धि को, और ऐसा व्यक्ति सहन भी नहीं कर सकता, समा भी नहीं सकता, किंतु वही कर सकता है। इसलिए कहते हैं बाबा सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। सही परखा, सही निर्णय किया, तो हमें विस्तार को सार में ले आए, समेट लिया, सहन कर लिया, सहन कर लिया तो समा लिया, फिर कोई प्रॉब्लम है इसको सामना कर लिया, सामना करने के बाद इसको हमने, और वही व्यक्ति जिसने मेरे को गलत किया वो मेरे सामने आया मदद के लिए, तो उसको मदद भी कर दिया, सहयोग भी कर दिया। तो इस तरह 7 एनर्जी के छह जो स्पेशली जो अतिंद्रिय सुख आनंद की शक्ति है, उसके आधार पे 8 शक्तियां पैदा होती हैं। तो जो सत्युग है, सत्युग में आत्मा इन 7 गुणों से इतनी ज्यादा भरपूर है, बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा की 3 शक्तियां, बुद्धि मन और संस्कार, बुद्धि सेंट्रल है, बुद्धि में ये ज्ञान, इस बुद्धि में 7 एनर्जी भरी हुई है, बुद्धि के भी 4 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है दिल, जिसे मैंने कहा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस अंतरात्मा। 7 एनर्जी से आत्मा इतनी भरपूर है कि विवेक, मैंने परखने की शक्ति, एकदम ईश्वर जैसी है। सत्युग में ईश्वर हमारे साथ नहीं है, बाबा हमारे साथ नहीं है, किंतु वो शक्ति, ईश्वर जैसी शक्ति वो मेरे पास है। निर्णय करने की शक्ति जो है वो दिव्य है, एकदम डिवाइन है। और चित्त मेरा शांत, एकाग्र, आनंदमय है। इसलिए कहते हैं सत्युग की, सत्युग में हम देवताओं की बुद्धि कैसी होती है, सच्चित आनंद स्वरूप होते हैं। दिल में जिसके सत्य है उसका चित्त आनंद स्वरूप है। और ऐसे जो उसकी जो स्मृति है, उसके बाद मन है, ये तो हो गई बुद्धि। मन, मन में कौन सी स्मृति है इमर्ज, मन में देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज है। वृत्ति कैसी है, सबके प्रति आत्मिक वृत्ति है, रूहानी वृत्ति है। भावना सबके प्रति शुभ है, संकल्प पावन, श्रेष्ठ, शक्तिशाली और कल्याणकारी। और इतनी एनर्जी है आत्मा के पास कि ये रोम रोम, हमारा रोम रोम, शरीर का जो रोम, हमारी जो ब्रेन है उसमें 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब सेल्स हैं, ब्रेन की सेल्स 100 अरब होती हैं, 100 बिलियन। आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये बाहरी जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, शरीर के 8 अंग हैं। रोम रोम से सत्युग की विशेषता यह है, सत्युग में बुद्धि सतो प्रधान है, सच्चित आनंद स्वरूप है, और मन में मन मना टीम, 4 बातें बताई मैंने, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में बनता है टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। हमारी टीम 100% पॉजिटिव है, सत्य है, टीम में भी पॉजिटिव है, सत्य सत्य समाया हुआ है, दिल में भी सत्य है, मन में भी सत्य है, संस्कार भी सत्व प्रधान है। तो हमारा रोम रोम, हमारी एक एक कर्मेंद्री से इतनी एनर्जी निकल रही है, जैसे ये बल्ब देख रहे हैं सामने, मेरे सामने बल्ब है, बल्ब बहुत पावरफुल बल्ब होता है तो क्या होता है, बल्ब नजर नहीं आता है, क्या नजर आता है, सिर्फ रोशनी नजर आती है। तो सत्युग में आत्मा के पास इतनी रोशनी है, इतनी लाइट है, सात लाइट इतनी अधिक है कि आदमी का, देवी देवता का चेहरा नजर नहीं आता है, क्या नजर आता है, सिर्फ लाइट ही लाइट नजर आती है। इससे देह का भान वहां होता नहीं, देह की तरफ दृष्टि जाती नहीं, देह दिखाई नहीं देती। अगर आप देखो कभी, जैसे आपको याद होगा, जब जो पुराने वीकेज है उनको पता होगा, जब कभी जन्माष्टमी पे कृष्ण के पधरा, कृष्ण का आह्वान करते थे, कृष्ण आता था, है ना, तो कैसा चेहरा हो जाता था उसमें, मोहिनी बहन के अंदर श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण आते थे, वही मोहिनी बहन होती थी और मोहिनी बहन बाद में, कैसा चेहरा हो जाता था, नजर टिकती नहीं थी चेहरे के ऊपर। अभी जब बाबा आते हैं, दादी के अंदर बाबा आते हैं, तो बाबा कैसे हो जाते हैं, कैसा पावरफुल फेस हो जाता है, वही दादी होती है, बाबा के आने के बाद क्या हो जाता है, फिर बाबा चले जाते फिर कैसा हो जाता है। तो इतनी एनर्जी बाबा उसमें हमारे अंदर होती है, सातों एनर्जी इतनी अधिक होती है कि वो हमारी कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख, हर अंग, हाथ पैर कमल के समान हो जाते हैं, कमल के समान न्यारे प्यारे। इसलिए कमल नयन, देवताओं को क्या कहना है, कमल नयन, कमल मुख, कमल नासिका, कमल करण, कमल हस्त, कमल पाद, एक एक सेल भी कमल जैसी हो जाती है, भरपूर, सातों एनर्जी से भरपूर। तो कर्मेंद्रियां भी हमारी तत्व प्रदान, ये देवताओं की निशानी है, सातों एनर्जी इतनी भरपूर है रोम रोम में। इसलिए कहते कंचन काया, मनुष्य के पास दो काया होती है, एक सूक्ष्म काया, एक स्थूल काया। सूक्ष्म काया है मन, जो तीन आत्मा की तीन एनर्जी है ना, सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, ये इनसे सूक्ष्म काया, सूक्ष्म शरीर बनता है, और ये स्थूल शरीर पांच तत्वों का बना होता है। सत्युग में हमारी सूक्ष्म काया भी इन सातों गुणों से भरपूर है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों से भरपूर है। और हमारे शरीर, ये पांचों तत्व के बना हुआ शरीर, ये भी सातों एनर्जी से भरपूर है। हमारी एक एक सेल सोने, मतलब सोने जैसी है, कंचन है। कंचन क्यों है, क्योंकि धरती पर ऑक्सीजन भी 50% होती है उसमें, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस होती ही नहीं, कोई कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, सांप, बिच्छू होते ही नहीं, जी नहीं सकते, इतनी ऑक्सीजन में वो जी नहीं सकते, इससे हमें बीमारी होती नहीं। शरीर भी पूरी तरह डेवलप्ड होते हैं, संतुलित होता है, राइट और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस होता है। तो ये है सत्युग का देवी देवता स्वरूप। फिर सोलह कला में ना फुल मून, फुल चांद, 100% रोशनी। फिर दो कला कम हुई, थोड़ी सी रोशनी कम, थोड़े से सात गुण कम हो गए, 75% के बाद 75% हो गई, तो त्रेता आ गया। अभी कर्मेंद्रियां हमारी, कृष्ण का हम कहते कमल नयन कमल मुख, लक्ष्मी नारायण का बोलते कमल नयन कमल मुख, राम सीता का कभी कमल नयन कमल मुख नहीं बोलते हैं, उसको बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी मर्यादाएं कमल नयन नहीं रहते, कमल मुख नहीं होता, कमल नासिका नहीं होती, कमल करण नहीं होते, कमल हाथ नहीं होते राम के, सीता के, किंतु मर्यादाएं उनके जीवन में होते, संस्कार अभी भी सत्व प्रधान रहते हैं, संस्कारों में सत्व स्थिति रहती है, नियम मर्यादाओं में वो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, राइट। सत्युग में कर्मेंद्रियों में सातों गुण भरे होते हैं, और त्रेता में क्या होता है, कर्मेंद्रियों में सातों गुण नहीं दिखाई देते, किंतु हमारे नियम मर्यादाओं में हम सत्व प्रधान होते हैं, राइट, सातों गुण भरपूर होते हैं, इसलिए पवित्रता वहां भी रहती है। जब द्वापर का, त्रेता का एंड आता है, तो सातों एनर्जी आत्मा की 50% से कम हो जाती है, तो हम बन जाते हैं मनुष्य। 50% से कम हो गई, पहले सत्युग का जब तक 51% एनर्जी थी आत्मा की, तो राज्य था सत्य, आत्मा का राज्य, मन पर भी, बुद्धि पर भी, संस्कारों पर भी, पांचों कर्मेंद्रियों पर भी, आठों अंगों पर भी, सब कुछ आत्मा राजा थी। जैसे ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होते, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, डिस्चार्ज होते 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 चार सेल होते हैं उसके अंदर, फिर रह गए दो सेल, रह गए अभी दो सेल से भी थोड़ा कम होता ही, जब तक दो सेल से ज्यादा है तो पावरफुल है हमारा मोबाइल, कि जब दो सेल से कम हुआ तो तभी जो है एनर्जी कम हो गई। अभी क्या होता है, नेक्स्ट जो पावरफुल है एक्चुअली क्या, सत्युग में बुद्धि है, बुद्धि सत्व प्रधान है, सच्चित अनंत स्वरूप है। बुद्धि में दिल में सत्य है, सत्य माना ये एबीसीडी छह एनर्जी से भरपूर है, विवेक ईश्वरीय है, बुद्धि निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है। इसलिए हमारा टीम पॉजिटिव है, हमारा मन जो है वो बिल्कुल 100% पॉजिटिव है, और रोम रोम में एनर्जी है। जब त्रेता का अंत हुआ तो अब आत्मा की एनर्जी हो गई कम, 49% त्रेता के अंत पर, अब मन की एनर्जी हो गई 51%। मन पावरफुल हो गया, मन का कनेक्शन पांचों कर्म इंद्रियों से है, आंख नाक कान मुख त्वचा से, बाहर क्या अब जो है मन क्या देखता है, मन बाहर की चीज देखना शुरू करता है। अभी लाइट कम हो गई कर्मेंद्रियों में, लाइट कम हो गई है, पहले लाइट थी बहुत तेज, जैसे ये सामने लाइट मेरे आंखों में पड़ रही, इतनी लाइट थी, चेहरा नजर नहीं आता था, इतना बड़ा आभामंडल, बहुत बड़ा आभामंडल था। अभी क्या हो गया, स्किन के लेवल पे आभामंडल आ जाता है, देह दिखाई देने लगती है, सत्युग त्रेता में देह दिखाई नहीं देती है, गुणों में व्यवहार होता है, दैवी गुणों में व्यवहार होता है, फिर अब देह दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो देह का आकर्षण आता है। सबसे पहले देहवान आता है, देहवान, देह देखी देहवान आया, मेल को मेल का, फीमेल को फीमेल का, राइट। तो देहवान आने से आकर्षण होती है, तो देहवान, देह का आकर्षण होने से काम विकार आता है, और काम विकार आते ही गिर जाते हैं। बताया ना एडम और ईव ने जो फॉरबिडन फ्रूट खाया तो हेल में आ गए, मन राजा बन गया, मन अभी आंखों से देख रहा है, तो अपनी अपनी बॉडी भी रिकॉर्ड हो गई अंदर, मन दिल में चली गई, और दूसरे की बॉडी शरीर भी हमारे दिल में चला गया, कॉन्शियसनेस में चला गया, दिल में चला गया। अब क्या हुआ, अब और जब जो जिस व्यक्ति से हमारा स्नेह हुआ, आकर्षण हुआ, उससे हमारा लगाव हो गया, झुकाव हो गया, बच्चे होते उनसे और मोह पैदा हो जाता, उसकी तरफ कोई देखता क्रोध आता, उनके लिए फिर हम इकट्ठा करते तो लोभ के रूप में इकट्ठा करते, और फिर जितना इकट्ठा कर लेते उसका अहंकार आता, इस तरह पांच विकारों का जन्म होता। तो शुरू शुरू में मन का द्वापर में मन का राज्य होता, देह का आकर्षण बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार आते जाते। फिर कलयुग जब आता तो संस्कार, सत्युग त्रेता में आत्मा का राज्य, द्वापर में मन का राज्य, मन फिर भी भक्ति भाव में लग जाता, मन में भक्ति के संस्कार जागृत होते, दुख में भगवान याद आता, भक्ति करते, पहले अव्यभिचारी फिर अव्यभिचारी, और उसके बाद जब द्वापर शुरू, जब ये द्वापर पूरा होने लगता तो क्या होता, अभी मन भी वीक हो जाता, अब संस्कारों में गलत करने की आदत पड़ जाती, तो हम कल्प में चल रहे हैं, कल्प में कैसे हम चल रहे हैं, हमें समझ आ जाए कैसे हम वापस ब्राह्मण सो फरिश्ता बने, ये बात समझ आने के बाद कैसे हमारी स्टेज गिरी और कैसे फिर वापस चढ़ना हमको। तो द्वापर तक, द्वापर में हमारा राज्य मन का राज्य है, जो स्मृति रिकॉर्ड होती है, संस्कार बनते जा रहे हैं, फिर कलयुग के शुरू में संस्कार राजा बन जाते हैं, आदतें राजा बन जाती हैं, हम ऑटो मोड में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हमसे गलत काम होते रहते हैं, और कलयुग के अंत में आकर के कर्मेंद्रियां राजा बन जाती हैं, आंख नाक कान मुख और त्वचा और हमारे अंग, ये कहते हैं ये खाओ ये देखो, देखने की दिल मन भी नहीं है तो भी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट में लगे हैं, सिरदर्द हो रहा है तो भी देख रहे हैं, पेट भर गया है तो भी खा रहे हैं, जीत करे खाओ खाओ, कान करे सुनते रहो, हाथ कहना ऐसे करते रहो, अभी कर्मेंद्रिया राजा बन गई। अब ऐसे जब जैसी हालत हो गई है इंसान की कि हर आदमी इसी हालत में पांचों विकारों के वश, पांचों कर्मेंद्र विकारों के वश, और इनके बाल बच्चों के वश, आलस के वश, अलबेलेपन के वश, है ना, जानते हुए भी आलस करते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, और दूसरों में दोष, अपने दोष नहीं देखते हैं, दूसरों के दोष देखते हैं, उनके दोष दिखाई देते हैं, एक भी गुण दूसरों का दिखाई देता है हमको, बदलने की भावना रखते हैं, शक करते हैं दूसरों पर, अनुमान लगाते हैं, चिंता कर, हर समय चिंता में रहते हैं, हर समय डर लगता रहता है, हर समय जल्दी में रहते हैं, हर समय क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं दूसरों से, थोड़ी भी आगे जाए तो उससे ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे में भगवान आता है, इसको शूद्र कहते हैं। जब कर्मेंद्रियां इतनी वश हो जाते हैं, जब हम अपनी कर्मेंद्रियों इतने वश हो जाते हैं, ना मन का चल, ना बुद्धि की चलती, बुद्धि भी काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करता, संस्कार भी शांत होकर बैठ गए, कर्मेंद्रियां अपने आप ऑटोमेटिक चल रही, गलत काम अपने आप हो रहे, ऐसी स्थिति में भगवान आते हैं, शिव बाबा आते हैं। और अभी क्या है, ऐसे मनुष्य की हालत, शुद्ध जिसे कहते हैं, उसकी बुद्धि में देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, ये चार ही बातें उसके दिल में रहती हर समय, इसलिए विवेक जो है हमारा कंफ्यूज हो जाता है, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलती है, वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे बोलते, इसको ये करूं तो ये नाराज हो जाए, ये करूं तो ये, ऐसे करूं तो ये नाराज, ऐसे करूं तो ये नाराज, नहीं ऐसा होता, क्योंकि दिल में बैठे ना कई सारे देह के, देह के संबंधी बैठे हैं, अपनी देह भी बैठी है, सेल्फिशनेस आ गई, ज्ञान ज्ञान खत्म हो गया, अज्ञान आ गया, पवित्रता खत्म हो गई, शांति खत्म, प्रेम सुखानंद शक्तियां खत्म, शक्ति तो अभी विवेक हमारा कंफ्यूज हो गया, बुद्धि भ्रष्ट, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, चित्त चंचल हो गया, अशांत और चंचल हो गया। स्मृतियां कौन सी वाली जागृत है, आसुरी स्वभाव की स्मृतियां जागृत है। वृत्ति कौन सी वाली है, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाली है। भावना कैसी है, जो मेरा है उसके लिए सब कुछ कर दूं, अपने भी सब कुछ करूं, जो मेरा है उसके लिए जान भी दे दूं, किंतु जो दुश्मन है उसको एक पैसा भी नहीं दूं। संकल्प कैसे चल रहे हैं, वही लगाव झुकाव प्रभाव टकराव वाले, ऐसी हमारी स्थिति होगी। तो बाबा जब आते हैं, चारों चीज हद है, देह भी हद में है, देह के संबंध भी हद में है, देह के स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव क्या, पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और देह के आदत क्या है, संस्कार क्या है, ये दस बातें जो मैंने बताई ना आपको, आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदलने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, ये हमारे संस्कार स्वभाव बन गए। और देह के पदार्थ जो प्रॉपर्टी है उसमें बुद्धि रहती है, सामान है हमारा, अपने कपड़े हैं, चीजें हैं अपनी, उन पे बुद्धि रहती है, उन्हीं में दिल लगा रहता है, उनको कुछ ऊपर नीचे होता है तो विचार उसी के चलते हैं। तो बाबा आता है, जब बाबा क्या करता है, बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण का मतलब क्या है, ब्रह्मा, ब्रह्मा माना ब्राह्मण, बेहद बड़ी विशाल मां, बेहद की मां, राइट, बेहद की मां या सबकी मां, बड़ी मां, ऐसे ब्राह्मण शब्द है, उसका अर्थ क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद मन, जिसकी बुद्धि और मन सदा बेहद में रहे। मनुष्य की बुद्धि और मन कहां रहते थे, हद में रहते थे, देह हद है, देह के संबंध हद है, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ हद है, और बेहद सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या है, उसकी बुद्धि और मन कहां रहते हैं, हमेशा बेहद में रहते हैं। बेहद क्या है, आत्मा बेहद है बहुत छोटी सी, 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है, दिखाई भी नहीं देती, कहां से कहां पहुंच जाते एक सेकंड में, ये बेहद है, परमात्मा बेहद है, आत्मा से परमात्मा के संबंध बेहद है। और चौथा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं का पार्ट बेहद है, कभी घिसता नहीं है, कभी मिटता नहीं, ये ज्ञान बेहद है, नहीं तो ये जो चार चीजें बेहद है, जैसे बताया ना, ज्ञान माने एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, ये बेहद है। तो जिस दिल में एबीसीडी है, जिस दिल में ज्ञान है, जिस दिल में ये बाबा आ गया है, मेरा बाबा मैं दिल में आ गया है, तो वो दिल में और ये चार चीजें आ गई हैं। मन में क्या आ गया, जिस दिल में ये आ गया, एबीसीडी आ गया, सारा दिन ये मनन चिंतन मंथन चल रहा है, मैं कौन हूं। बाबा ने आज संडे की मुरली, याद है आपको, 19 तारीख को जो संडे की मुरली चली थी, रंग रूप और खुशबू, रंग माना ज्ञान, रूप माना याद, और खुशबू माना दैवी गुण, दिव्य गुण। तो एक तो होगा कि हमने सुबह शाम एक सुबह मुरली सुन ली, हम मुरली सुनने, हमें ज्ञान सुनने वाले हो गए, आधा घंटा सुबह अमृत वेला कर लिया, शाम को आधा घंटा योग कर लिया, योग का अभ्यास भी कर लिया, वो नहीं। ये तो रंग रूप, हमारा ज्ञानी जीवन हो, योगी जीवन हो और दैवी गुण प्रैक्टिकल लाइफ में हो, खुशबू दैवी गुणों की हो, तो ऐसी आत्मा सेवा करती है ना। तो ये बेसिक जो है हमें ज्ञान, ज्ञानी हमारा जीवन है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन को इंग्लिश में कहूं तो बीइंग द ट्रूथ, सत्य बनना ही मेडिटेशन है। सत्य क्या है? एबीसीडी, ये ज्ञान, बाबा की मुरली। जितना अधिक इस ज्ञान को हम गहराई से समझते हैं, करते हैं, इसको हम सारा दिन मनन माना रिवाइज करते हैं, चिंतन माना गहराई में जाते हैं, मंथन माना इसको कैसे अब मेरे जीवन में आए, इसका इसकी गहराई में जाते हैं, मंथन करते हैं, और सिमरण माना जो मक्खन निकलता है उसको कार्य में लगाते हैं, कर्म करते हुए उसका ध्यान रखते हैं, उसको इससे वैसे कर्म करते हैं, तो वो जो है हमारे अंदर, तब दिल में पवित्रता पैदा होती जाती है। पवित्रता पैदा होने से शांति आती जाती, शांति माना अब हमारे अंदर सिर्फ पास्ट और भविष्य का चिंतन नहीं चलता है, सिर्फ वर्तमान में रहते, बाबा के साथ जुड़ के रहते, अब सबको माफ कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्यार रूहानी प्यार पैदा हो जाता है, किसी के प्रति ये नहीं रहता ये ऐसा है ये ऐसा नहीं, सब अच्छे हैं, अत्यंत सुख की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, उसके आधार पर शक्तियां पैदा होने लगती हैं। हमें सिर्फ बाबा से ज्ञान मिलता है, ब्राह्मणों को हम बाबा से ज्ञान मिलता है, पवित्रता हमें बनानी है। पवित्रता ऐसे नहीं ऊपर से पवित्रता किरणें आ रही है, शिव बाबा प्यार पवित्रता का सागर है मेरे अंदर पवित्रता आ रही है, ऐसे नहीं, ऐसे पवित्रता नहीं आती है, ऐसे आती है। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान देता, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाएंगे तो पवित्रता मेरे कर्मों में आएगी, मेरा मन बुद्धि पवित्र होगा। खाली ऐसे नहीं बैठ जाओ, ज्ञान की किरणें आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं, शांति की किरणें आ रही, चार घंटा भी ऐसे बैठे कुछ नहीं आएगा, आता भी नहीं ऐसे, है ना। यही मेहनत है, चलते फिरते उठते बैठते, हमारा मेडिटेशन आधा घंटा सुबह शाम का नहीं है, हमारा राजयोग का मेडिटेशन का अर्थ ही है बीइंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ, रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, सत्य बनना, सत्य रहना और सत्य को जीना, सत्य को अनुभव करते रहना, हर कर्म करते अनुभव करते रहना, मैं ये हूं, मैं देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अपने अंदर से देख महसूस करो मैं आत्मा हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं ऊर्जा हूं, देह अलग है मैं अलग हूं, मैं आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य, परम चैतन्य माना चैतन्य और परम चैतन्य में क्या, चैतन्य माना जागती ज्योत और परम चैतन्य माना सदा जागती ज्योत। हम कभी सो जाते हैं, आत्मा की ज्योत कम हो जाती है किंतु उसकी ज्योत सदा जागती ज्योत है, परम चैतन्य परम ज्योति, सदा जलने वाली ज्योति, कभी ना बुझने वाली ज्योति, हमारी ज्योति कभी टिमटिमाती है, कभी ज्यादा कभी कम, परम पिता परम आत्मा शिव बाबा के संतान। और मेरे शिव बाबा, मेरे बाबा कौन से हैं? शिव बाबा कौन है? सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस है, ओशियन है, पावर सागर है। मेरा बाबा सदा सत्य है, सदा सत्य है, हम सदा सत्य नहीं है, आधा कलप सत्य है आधा कलप असत्य है, आधा कलप श्याम है आधा कलप सुंदर है, वो सदा सत्य है, सदा पावन है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, सदा शांत है, उसको कभी सिर्फ वर्तमान में रहता ना, पास की सोचता ना भविष्य की सोचता है, जो होने वाला होता है वही उसको संकल्प में आता है, आगे पीछे संकल्प आता ही नहीं शिव बाबा को, वो सदा ही रूहानी प्रेम है, सबके प्रति उसके मन में रूहानी प्रेम है, किसी के प्रति ऐसा नहीं कि ये ऐसा ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है, ना कोई कैसा भी है उसका पार्ट एक्यूरेट पार्ट है, उसे संकल्प नहीं, कोई किसको मार रहा है तो उसको संकल्प नहीं चलता इसको क्यों मार रहा है, उसको पता है इसने मारा हुआ इसलिए मारा वापिस दे रहा है इसको ब्याज के साथ, उसे संकल्प नहीं चलता, उसे रूहानी प्यार है, अतिंद्रिय सुख है, वो अतिंद्रिय सुख है, अतिंद्रिय सुख का सागर नहीं, अतिंद्रिय सुख है वो, उसे से जाके मिल जाओ तो आप चिंतित सुख की अनुभूति होने लगती है। वही आनंद है, वही सर्वशक्तिवान है, वही हीलिंग एनर्जी का सागर है। कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, मन तन की बीमारी कुछ भी हो, सबके सब उसको याद करेंगे तो वो ऐसा शिव बाबा है। और ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे क्या कर रहा है, सरल संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सर्जन और बच्चा, ही नौ संबंध का बहुत गहरा अनुभव होना चाहिए, यही योग है। एक एक संबंध का गहराई से अनुभव करना यही योग है। और शिशुपी ड्रामा, इस शिशुपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और शिव बाबा बताया मैंने, ऐसा क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इस ड्रामा में कोई भी दोषी नहीं है। हम कहां दुखी होते हैं, मेरा जीवन इसने खराब कर दिया, मेरी तबीयत किससे खराब होती, इसने मेरे को बीमारी पैदा की है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, इससे मुझे तकलीफ होती है ना। हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कोई गाली दे रहा है, ठीक गाली दे रहा है, उस गाली को संभालो, अभी बाबा मेरे साथ है, सहन कर लो, संभालो, फिर बाबा नहीं मिलेगा पूरे कल्प में, वापस रिएक्शन मत करो, रिएक्शन किया तो क्या हो जाएगा, और ब्याज चढ़ जाएगा। कोई तंग कर रहा है, करने दो, बाबा की याद में खो जाओ, उसको तंग करने दो, धोखा दे रहा है, धोखा देने दो, लूट रहा है, लूटने दो, क्योंकि हमने लूटा हुआ है। रिएक्शन मत दो, कोई आपको आपके हिस्से का कोई लूट नहीं सकता है, सचमुच बात सत्य तो ये है, एक पैसा भी अगर जो उसके हिस्से का वो ले लेगा, चिंता मत करो, बाबा आपके साथ, बाबा हमारे साथ। जब ऐसा करोगे ना, जब ऐसा करते हैं तो पवित्रता आई, मेरे पास ये सीक्वेंस है, पवित्रता कमाई, ये पवित्रता कमाई है, शांति आई, नेगेटिव और वेस्ट संकल्प आने बंद हो गए, वर्तमान में टिकना शुरू हो गए। 30 संकल्प आते थे एक मिनट में, अभी 5-6 संकल्प रह गए, 8 संकल्प रह गए एक मिनट में, मेरे कंट्रोल में गाड़ी आ गई, है ना, रूहानी प्यार बताया, निंदे सुख आनंद आ गया, अब प्रकृतिक शक्ति आ गई, अब ईश्वर जैसी प्रकृतिक शक्ति हो गई। निर्णय शक्ति कैसी हो गई, दिव्य हो गई, चित्त शांत एकाग्र आनंदमय हो गया। अब क्या होगा, अब अंदर अंदर जो मेरे मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, चित्त माना सबकॉन्शियस माइंड, पहले मुझे नींद नहीं आती थी, सबकॉन्शियस माइंड बहुत भारी हो गया था, बहुत संकल्प चलते थे, निर्णय नहीं होता, सारी फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में जाती थी, अभी निर्णय हो जाता है टाइम पर, सबकॉन्शियस माइंड शांत हो गया, अब नींद बहुत अच्छी आती है, सुबह अमृतवेला उठ सकता हूं। तो ब्राह्मणों के चार परिभाषा में क्या हुआ, ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, ब्राह्मण वो जिसका बुद्धि और मन सदा बेहद में रहे, हद में ना जाए, बेहद माना ABCD राइट, इसके बाहर नहीं जाना, EF में नहीं जाना चाहिए, ई माना एक्स्ट्रा, एफ माना फोर्स, जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए राइट, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। तो ये जितना हम करेंगे, ब्राह्मण का मतलब ये परिभाषा है, फिर ब्राह्मणों के 12 और विशेषताएं हैं, चार नियम, चार मर्यादाएं और चार धारणाएं। पहला नियम अमृत वेला, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, कभी अमृत वेला मिस नहीं, उसका पावरफुल अमृत वेला होता है। अमृत वेला ही समय है जब विक्रम विनाश हो सकते हैं, बाकी सारा दिन कितना मर्जी योग लगा लो, विक्रम विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि जब नींद से उठते हैं तो हमारे संकल्प सिर्फ 3-4 चल रहे होते हैं, दिन में 15-20-30 संकल्प भी चलते हैं। शिव बाबा को 0 संकल्प है, ब्रह्मा को एक ही संकल्प है, सिर्फ एक, मेरे बच्चे तैयार हो तो मैं वापस घर चले। 48 साल हो गए ब्रह्मा बाबा को बैठे हुए ऊपर, 48 साल, एक दो साल नहीं, एक दो दिन नहीं, आप एक दो दिन भी बैठे तो तंग हो जाओगे। बाबा कितने साल से बैठा ऊपर, 48 साल से बैठे, किस लिए, मेरे बच्चे संपूर्ण बने तो घर चले। तो बाबा को एक ही संकल्प है बस, और कोई दूसरा संकल्प भी नहीं है ब्रह्मा बाबा को। और मेरे संकल्प कितने हैं, 15-20, तो योग लगेगा। सुबह सुबह हो सकता है, सुबह जो उठते हैं ना हम लोग, तो दो तीन संकल्प चार संकल्प ही होते हैं। जैसे हम गुड मॉर्निंग करते हैं शिव बाबा गुड मॉर्निंग, कनेक्शन लग जाएगा। मुंह हाथ धोके ब्रश करके बैठ जाओ और संकल्प करो एकदम जीरो एक दो, आपके दो संकल्प बाबा के पास पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, सूक्ष्म वतन माना क्या, बाबा के दिल, शिव बाबा के दिल को ही सूक्ष्म वतन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं, सूक्ष्म शरीर माना पवित्र बुद्धि पवित्र मन। अगर मेरी बुद्धि और मेरा मन पवित्र है तो मेरा सूक्ष्म शरीर कैसा है, उड़ने जैसा है, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा माना इस देह और देह की दुनिया के परे चला जाएगा। अगर ये अपवित्र है, पतित है, तो इस शरीर में चिपका रहेगा, स्थूल शरीर चिपका रहेगा। पवित्र, पवित्र माना जिसमें ABCD समाया हुआ है, जिसमें पवित्रता आ गई है, जिसमें शांति आ गई, प्रेम सुख आनंद शक्ति आ गई है, वो जो है दिल, वो दिल कॉन्शियसनेस, जैसे इसका चिंतन करते जाओगे कॉन्शियसनेस ऊपर उठती जाएगी। बुद्धि और मन के साथ आत्मा जैसे ऊपर उठ रही है और उठते उठते सूक्ष्म वतन में बाबा, सूक्ष्म वतन में बाबा का दिल, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के दिल में बैठा हुआ है और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के दिल में शिव बाबा बैठा हुआ है। समझ रहे, शिव बाबा का दिल क्या है, शिव बाबा क्या है, ज्ञान का सागर, पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियों का सागर, वह है सूक्ष्म वतन, उसमें शिव ब्रह्मा बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा क्या है, जिसने अपना पुरुषार्थ करके अपने बुद्धि मन और संस्कारों को सत्व प्रधान बना लिया, पावन सत्व प्रधान, संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना लिया, वह ब्रह्मा बाबा अव्यक्त ब्रह्मा, वो वहां बैठा है। उसके दिल सच्ची साफ है, उसमें कौन बैठा है, शिव बाबा बैठा है। तो शिव बाबा के अंदर ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा, ये है सूक्ष्म वतन। अगर मैं अपनी बुद्धि और मन को लेकर ऐसे पवित्र बुद्धि और मन लेके जाऊं तो मैं बाबा की गोद में पहुंच गया। बाबा की गोद क्या है, सात गुणों का सागर, तो आप सात गुणों के सागर में पहुंच गए, उसमें आनंद की स्थिति अनुभव होती है। ठीक है, तो ये जो है ऐसी स्थिति में जाओ, जैसे ये चिंतन करते हुए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते यही अंदर चलता रहे। कई सोचोगे क्या हम सारा दिन यही करते रहे क्या, हाँ यही करते रहना है। क्यों करते रहना है, क्योंकि इस समय हम क्यों परेशान है, हम 20 संकल्प करते हैं एक काम नहीं होता है। जब आप ये करेंगे संकल्प, ऐसे चलेंगे हर समय ये करते रहेंगे, तो आप जो संकल्प करोगे ना वही संकल्प, ऐसी स्थिति आ जाएगी जो संकल्प करोगे वो हो जाएगा और जो होने वाला है वही संकल्प आएगा। हर काम अपने आप होता रहेगा, जैसे अपने आप सत्युग में जैसे होता है अपने आप होता रहता है, ऐसे ही अभी होता जाएगा। तो ये हमारे चलते फिरते उठते बैठते इसी का मुरली है ना, तो पहले ब्राह्मणों की निशानी क्या है, अमृत वेला पावरफुल, क्योंकि ये समय क्या होगा, जैसे अमृत अमृत इसमें क्या है, दो पे जब जब तीन संकल्प पे पहुंचते आप सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हो, दो पे आप बाबा की गोद में पहुंच जाते हो, और जब बाबा की याद में लवलीन हो जाते हो तो खाली बाबा रह जाता है, तो परमधाम पहुंच जाते हो। जब परमधाम पहुंचते हैं तो वहां विक्रम विनाश होने लगते हैं। परमधाम में क्या होता है, संकल्प चलने बंद, कोई संकल्प होता ही नहीं, सिर्फ बाबा, एक ही संकल्प होता बाबा, तो वहां विक्रम विनाश में ना, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो देह देह के संबंधों की जो यादें हैं ना, निगेटिव यादें हैं, वो सब डिलीट होने लगती है। अच्छा डिलीट कुछ होता नहीं विक्रम विनाश में, मतलब डिलीट नहीं होते, सिर्फ मर्ज होते हैं, सारी प्रॉब्लम मर्ज और इमर्ज की है। अभी द्वापर में कलयुग हमारे जो विकार इमर्ज होते हैं, और सत्युग में अभी सत्संगम पे हमारे देवताई गुण इमर्ज होते हैं, तो इमर्ज होने लगते हैं और ये वाले गुण मर्ज होने लगते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह का भान देह के स्वभाव संस्कार है ना, देह का संबंध मर्ज होने लगते हैं, तो क्या होगा उसका, उस विकर्म पर विनाश। जितनी देर हम रहेंगे ना उतनी देर हमें ज्यादा विक्रम विनाश होंगे। हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर सूक्ष्म वतन में गए एक सेकंड दो सेकंड पांच सेकंड बस नीचे आ जाते हैं, डरते रहते हैं, यहां बैठे कभी सोए कभी जागे, कभी झटका इधर लिया कभी झटका इधर लिया ना। तो अमृत वेला सबसे पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि यही समय विक्रम विनाश होगा। दूसरा मुरली, मुरली क्लास में आके सुननी चाहिए, इंटरनेट पे नहीं, टीवी पे नहीं। आप खाना टीवी पे खा सकते हैं क्या, नाश्ता टीवी पे कर सकते हैं, टीवी में नाश्ता दिखाते हैं ना, वो नाश्ते की प्लेट दिखाते हैं, इंटरनेट पे दिखाते हैं, मोबाइल पे निकलती है ना, आप खाने की प्लेट ब्रेकफास्ट की प्लेट निकाल लो, देखो खाना खा लिया, हो गया बस, नाश्ता हो गया, नहीं हुआ ना? तो नाश्ता करना कहाँ है? ये जो क्लास है ना, बाबा की जो क्लास सेंटर बने हुए हैं, वो स्थान है जहां सारा दिन योग चलता है। ऐसी स्थिति में 45 मिनट या एक घंटा बाबा को देना, बाबा के घर में जाके बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनना, कोई भी बहन सुनाए, कोई भाई सुनाए, ये बाबा का लव लेटर है, बाबा की मुरली है, बाबा की गोद में बैठ के सुनो। वो जैसे एयरपोर्ट है, सेंटर क्या है, एयरपोर्ट है, आप वहां से उड़ सकते हो, अपने घर से उड़ना बहुत मुश्किल है, अपने घर से उड़ नहीं पाओगे, सेंटर एयरपोर्ट है या कहें रॉकेट स्टेशन है ना, वहां जाओ, वहां बैठ के मुरली सुनो। अगर आपके पास बाबा के लिए समय नहीं है तो बाबा के लिए भी आपके पास आपके लिए समय नहीं है। सुना कई बार हम कहते हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट पे क्या पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ये बात भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, 5 मिनट में मुरली खत्म, बस हो गया, तो बाबा के लिए भी आपके पास 5 ही मिनट मिलेंगे। सुना, मुरली बाबा की गोद में बैठ के सुननी चाहिए। 9 लाख में आने वाले क्लास में आके मुरली सुनते हैं। समय नहीं है इसलिए मैं तो इस गहराई में जाता कि किस कैसे बाबा ने, कैसे बाबा ने मुरली में बताया हुआ है। तो कुछ भी करो, कितना भी छोड़ना पड़े, लोकलाज छोड़नी पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, बाबा के सेंटर पे आओ। टीवी इंटरनेट पे या पीस ऑफ माइंड पे मुरली मत सुनो, तो पीस ऑफ माइंड पे फिर देखोगे भी, सत्युग में पीस ऑफ माइंड पे देख, सत्युग में दिखाई दे, टीवी पे दिखाई देगा, आप वहां पहुंचेंगे नहीं। थोड़ी सख्त बात बोल रहा हूं किंतु ये रियल है, वहां जाके सुनो। टाइम नहीं है तो बाबा के पास भी टाइम नहीं है। बाबा ने कहा, बच्चे बोलते टाइम नहीं है, बाबा के पास ठीक है टाइम नहीं है तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो टाइम देना होगा। बाबा को क्या चाहिए, पैसा नहीं चाहिए आपका, समय चाहिए, अपना समय लगाओ, श्वास लगाओ, संकल्प लगाओ। 3 ही धन बाबा मांगता है, ये मुझ में लगाओ। तो मुरली सुनो और फिर सारा दिन अटेंशन रखो। तीसरा, पहली है नियम अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा फिर सारा दिन अटेंशन। अटेंशन में 4 बातें आती हैं, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन। मैंने बताया मनन मन रिवाइज करो मुरली को, फिर चिंतन गहराई में जाओ, मुझे ये बनना है, मुझे करना है। मंथन उसका जूस निकालो, मैं मेरी लाइफ में कैसे आई ये बात, बाबा की याद में खो जाओ, बाबा कहेगा बाबा मैं कैसे करूं, बाबा बताएगा बच्चे ये ऐसी, मेरे ये लाइन का मतलब ये था, मुझे मुरली में आज ये कहा ना, इसका मतलब ये है। फिर जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ, कार्य करते हुए उसको कार्य में लगाओ, तो वह रिकॉर्ड हो जाएगा। कार्य में लगाने से रिकॉर्ड होगा, सुनने से रिकॉर्ड नहीं होता है। कर्मों में रिकॉर्ड हो जाए, कर्मों में रिकॉर्ड होगा तो आपके संस्कार बदलेंगे। फिर सोते समय वेंटिलेशन, 4th नियम है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब उसमें भी 4 बातें आती। पहले जैसे आज की मुरली, समाचार दो बाबा को, सच्चा सच्चा यथार्थ समाचार दो, कहां पे गलती हुई, कहां मर्यादा ऊपर नीचे हुई, लिखो। बाबा मीठे बाबा, आज मैंने देखा ना, सुबह खाना खा रहा था, खाना खाते आसक्ति, खाना बहुत अच्छा लगा, मैंने 1 रोटी ज्यादा खा ली। बाबा वो देखा ना, वो ऐसे कर रहे थे, मेरे को लगा ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी पाप है। 4 तरह के बाबा के बच्चों के पवित्रता, अपवित्रता कौन सी वाली है, स्थूल पवित्रता भी नहीं है, किंतु लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव वाली है पवित्रता। किसी से लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है, किसी के प्रभाव में जाते हैं, बड़ों के प्रभाव में आ गए, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, बहुत अच्छी उनकी वो वाइब्रेशन है, उसके प्रभाव में बाबा को छोड़ के उसके प्रभाव में आ जाते हैं, टकराव, किसी के प्रति टकराव कर लेते, ये भी अपवित्रता है। और फिर 4थी जो बात है वो है, वो क्या क्यों कैसे करना, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों, ये भी अपवित्रता है, तो ये छोड़ दो। ठीक है, तो पहला है लेटर लिखो, सच्चाई से लिखो, आज क्या क्या गलतियां हुई, कहां मर्यादा नियम मर्यादा ऊपर नीचे हुआ। फिर उसके बाद है, फिर चार्ट भरो, याद का चार्ट भरो, घंटे घंटा याद का चार्ट बनाओ, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कितने 1 घंटे में कितने मिनट बाबा की याद रही, टोटल करो सारा दिन। फिर एक मुरली पूरी पढ़ो, सोने के पहले मुरली पूरी पढ़ो, मन प्लेन हो जाएगा, और फिर 3 मिनट बाबा को याद करके सो जाओ, सोने के पहले, और 10:30 बजे तक सो जाओ। इससे सो जाएंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे सुबह अमृत वेला इतना पावरफुल, एकदम उठेंगे, फ्रेश होकर उठ, नींद गहरी आएगी और अमृत वेला पावरफुल होगा। तो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, वेंटिलेशन, ये चार नियम है, मर्यादाएं आप सबको पता है। पवित्रता, जितना अधिक पवित्रता बढ़ाओगे उतना अधिक योग लगेगा, उतना अधिक अमृत वेला अच्छा होगा, उतना अधिक मुरली अंदर जाएगी, उतना अधिक अटेंशन रहेगा, उतना अधिक सच्चाई से वेंटिलेशन करेंगे। शुद्ध सात्विक भोजन समय पर खाओ, बाबा की याद में बनाओ भोजन खाओ, शर्माओ नहीं कि मुझे मेरी बहू नाराज हो जाएगी, मेरा ये नाराज हो जाएगा, मैं खाना ही पड़ता है, अपने हाथ से बनाओ, बाबा अंत तक साथ देगा, अपने हाथ से बना के खाना खाओ, बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में रहकर खाओ। सूक्ष्म वतन बाबा हमसे कितने दूर है, सूक्ष्म वतन में कितने दूर है, एक सेकंड पे दूर, एक सेकंड की दूरी, सोच के एक सोच की दूरी पर है, प्लेट लो बाबा के पास चले जाओ, आप बाबा को खिलाओ बाबा आपको खिलाए, नहीं ऐसा हो सकता, होता है ना ऐसा कर सकते हैं। और सत्संग, बाबा और मुरली के अलावा कोई चीज पढ़ो मत, और किताबें, मैगजीन पढ़ना, इधर पढ़ना, उधर, वो सब छोड़ दो, दैवी गुणों की धारणा, कभी गुस्सा मत करो, कभी उदास मत हो जाओ, क्योंकि एक बार गुस्सा किया कई दिन तक आपको योग लगेगा नहीं, उदास हो गए योग लगेगा नहीं, तो दैवी गुणों की धारणा करो, सत्य, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता। तो ये चार मर्यादाएं, चार नियम और चार धारणाएं, आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी माना, आज्ञाकारी माना, दो आज्ञाएं बाबा की है, पवित्र भव, योगी भव, सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव, हर समय अटेंशन रखो मैं पवित्र हूं, योग लगा हुआ है बाबा से नहीं लगा हुआ, निरंतर योगी, फिर वफादार, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, किसी और को अपना मत बनाओ बाबा के अलावा, पालना सबकी करो, सबके साथ रहो, किंतु दिल से बाबा का, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना ऐसे, उसके उसके अलावा किसी और में बुद्धि ना जाए। फिर ईमानदार, हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध, संपर्क बाबा की श्रीमत के अनुसार करो, अपना धन, सूक्ष्म धन, श्वास, संकल्प और समय, और स्थूल धन बाबा की श्रीमत के अनुसार लगाओ। फिर फरमान बरदार, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से त्याग दो, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे, पावन सत्व प्रधान बनेंगे, ये बाबा का फरमान है, तुम उससे मिलन बना सकोगे, विक्रम विनाश होकर पावन सत्व प्रधान बनेंगे तो सच्चा मिलन होगा बाबा से। अभी मिलन होता नहीं है, अभी थोड़ा सा नाम मात्र मिलन होता है और हम खुश हो जाते हैं, बाबा से आज बहुत हमने ऊपर गए, बहुत अच्छा लगा, कुछ होता नहीं है, एक सेकंड में होता है कुछ, पांच सेकंड में कुछ होता है क्या? आप दूध को भगोने में रखो और उस पे गैस पे रखो, ऐसे रखा उतार लिया, हो गया, तैयार हो गया दूध, कीटाणु मरे क्या? नहीं मरे ना, रखो ना उस पे। सूक्ष्म मतन में कम से कम आधा 15-20 मिनट रहो, 5 मिनट परम धाम में रहो, तब तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे तो तब इस प्रोसेस को करते करते कुछ भी हो जाए, कभी अमृत वेला मिस नहीं करो, कभी मुरली मिस नहीं करो, कभी अटेंशन रखो सारा दिन, वेंटिलेशन, बिना लेटर लिखे बाबा को सो नहीं, मुरली पड़े बगैर सो नहीं, चार परहेज करो, चार धारणाओं का ध्यान रखो, ये करते 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 फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता माना बुद्धि में सदा दिल बाबा, दिल में सदा शिव बाबा रहेगा, दिलाराम रहेगा, मन टीम पॉजिटिव हो जाएगी, इसके अनुसार कर्म करेंगे तो नए संस्कार बन जाएंगे, उसे ही फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता माना जिसकी टीम 100% पॉजिटिव है, जिसके दिल में सदा शिव बाबा है, कोई देहधारी नहीं, कोई देह के संबंध नहीं, कोई देह का स्वभाव संस्कार नहीं, देह के पदार्थ नहीं, जिसका विवेक ईश्वर जैसा है, जिसकी बुद्धि दिव्य है, जिसका चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय है, उसका सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, फरिश्ते का ना सबकॉन्शियस माइंड होता ना अनकॉन्शियस माइंड होता, 100% कॉन्शियस माइंड होता, पूरा मन, मन पे पूरा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती, तो विक्रम विनाश, जब 23 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे तो हम फरिश्ता बनेंगे, राइट। तो टाइम पूरा हो गया इसलिए मैं यहीं पर पूरी करता हूं। तो ब्राह्मण बनना है, सच्चा ब्राह्मण माना जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जो कभी मुरली मिस ना करे, क्लास में आके, घर में नहीं, इंटरनेट पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, क्लास में आए, है ना। और जो कभी भी सारा दिन टेंशन रखे बाबा ने क्या कहा वो करना है मुझे, और सोने के पहले लेटर लिखे, चार्ट भरे, मुरली पढ़ के बाबा को याद कर सो जाए, और फिर मर्यादाओं का ध्यान, पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, और चार धारणाएं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। ऐसा सच्चा ब्राह्मण बनके सदा बुद्धि को और मन को बेहद में रखे, वो सच्चा ब्राह्मण है। ऐसा फिर सच्चे ब्राह्मण को फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है, सिर्फ अपने बुद्धि को, मन को और संस्कारों को सत्वप्रधान बनाना है, पावन सत्वप्रधान बनाना है, पूरे विक्रम विनाश करने फरिश्ता बन गए, और फरिश्ता बनने के बाद दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बन जाएंगे। ओके, ओम शांति। दो मिनट हम बाबा को याद करते हैं और फिर उसके बाद आप जाके आराम से सो जाएंगे। आज आज मुरली पढ़ के सोना है बाबा को, चार्ट भर लेटर लिख के चार्ट भर के मुरली पढ़ के फिर याद, दो मिनट याद करके सोना।